टॉक शो विद अर्पा रेडियो। अर्पा रेडियो में आज उपस्थित हैं स्पंदन की चार महिलाएं, स्पंदन एनजीओ। क्या है ये एनजीओ, कौन है इसके मेंबर्स, क्या कर रहे हैं ये लोग बिलासपुर में, इन सब की जानकारी के साथ आज हमारे साथ हैं आराधना त्रिपाठी, श्वेता शुक्ला, बिन्नी सलूजा और प्रियंका शुक्ला। स्पंदन में सिर्फ ये चार सदस्य नहीं हैं, लेकिन आज हमारे अर्पा रेडियो स्टूडियो में ये चार लोग उपस्थित हैं विस्तार से स्पंदन एनजीओ के बारे में बताने के लिए। क्या है स्पंदन, हमको बता रही हैं आराधना जी।
नमस्कार संज्ञा जी, सही कहा आपने, जो शब्द स्पंदन है वो सच में कहीं हम लोगों को अंदर तक छूता है, क्योंकि हम सभी कैंसर सर्वाइवर्स हैं और हमको धड़कन की कीमत अच्छी तरह पता है, और कहीं ना कहीं स्पंदन की शुरुआत भी वहीं से हुई, धड़कन से, और इसीलिए नाम भी मुझे सबसे उपयुक्त यही लगा। और कैंसर तो डायग्नोस मुझे भी हुआ 2012 में, लेकिन उस समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति हमको मिलना चाहिए। डॉक्टर्स सारी सलाह सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने सब कुछ झेला, और ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत लगती थी। और कीमो क्या है, रेडिएशन क्या होगा, ऑपरेशन के बाद कैसा लगता है, ये सब चीज़ें नहीं पता थी, मुझे तो नहीं पता थी बिल्कुल भी। और जितने भी सलाह देने वाले थे वो कहना चाहिए ऐसे लोग थे जिनको कीमो नहीं लगा था, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा था। और वहीं से हम लोगों ने शुरुआत की, कुछ और ऐसे सदस्य मिलते गए साथ में कि उनको भी यही समस्या चल रही थी, तो एक दूसरे का कहते हैं ना, हिम्मत बनते चली गई, जुड़ते चले गए हम सब आपस में। डॉक्टरों का भी सपोर्ट मिल रहा था कि बाकी समय यदि हम नहीं हैं तो आप हो, और किसी का दूसरा कीमो है तो पहले कीमो वालों को राय दे रहे हैं, किसी का छठवां कीमो है तो वो पहले कीमो दूसरे कीमो वालों को बता रहे हैं, कोई समस्या से निकला है तो वो हमको बताता था कि इस समस्या से हम ऐसे निकले, आप ये मत कीजिएगा, ये कीजिएगा, इतनी चीज़ें बारीकी से वही बताएगा जो इस सब से निकला होगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ से हुई स्पंदन की। रजिस्ट्रेशन हुए अभी 7 साल हो चुके हैं और हमारे पास अभी 17 मेंबर्स हैं, और हम इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि डायग्नोस जल्दी होना चाहिए, हम जल्दी पकड़ें तो शायद हम इतने बुरे इलाज से बच सकते हैं, और इसलिए हमारे जागरूकता के अभियान भी चलते रहते हैं। और हम सच बताएं कि अब ये कह सकते हैं कि हर समस्या जो है, हर मुसीबत आपको तहस नहस करने के लिए नहीं आती है, कुछ आपका रास्ता साफ करने के लिए आती है।
वाह, बहुत अच्छा आराधना जी, आपने जैसा कहा कि स्पंदन यानी कि धड़कन, और आप सारे कैंसर सर्वाइवर्स की धड़कन एक दूसरे को जोड़ती चली गई। एक बात आपने और कही कि एक दूसरे की हिम्मत बंधाते रहे हम लोग, जिसका पहला कीमो चल रहा है और किसी का तीसरा चल रहा है तो वो उसको हिम्मत बंधाता है। मुझे सुन के ऐसा लगा जैसे वैष्णो देवी की सड़क पर लोग जाते आते हैं तो जाने वालों को आने वाले लोग कहते हैं जय माता दी, एक दूसरे को हिम्मत बंधाते, बस थोड़ी दूर है, बस थोड़ी दूर है। बस आपकी बातें सुन करके मुझे लगा कि ऐसे ही शायद आप लोगों एक दूसरे के साथ साथ मिलते हुए आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आपका अपना ग्रुप है, आप लोग किटी पार्टी खेलते हैं, आप लोग भूल चुके हैं कि आप लोग पहले किस दौर से गुजर चुके हैं। हर सर्वाइवर की एक अलग जिंदगी है, अलग कहानी है, लेकिन अब आप सब मिलकर उस रास्ते को पकड़ चुके हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को इस रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं। बिन्नी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे जुड़ी आप स्पंदन से, आराधना जी के साथ और इनके ग्रुप के साथ।
सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है, जैसे ही कैंसर का नाम सुना, जैसे ही डायग्नोस हुआ, तो कुछ देर को तो यही लगा कि जीवन में ब्रेकर आ गया है, लेकिन वो ब्रेकर से हम पास तो होते हैं ना, सड़क में भी चलते हैं तो उसको हम धीरे से निकालते हैं। बस एक बार ठान लिया कि हाँ, जैसे कि अपने स्पंदन के लिए तो मैं कहना चाहूंगी, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी समय मुझे आराधना दीदी मिली, और उनके साथ मिलने के बाद, जैसे कि कहा दीदी ने पहले भी, धड़कन मिलती है, वैसे ही हमारा दिल से दिल मिला, और हमने जो जो कठिनाइयां अपने ट्रीटमेंट के दौरान सहा, और हमने सोचा कि जो और भी पेशेंट हैं, हम क्यों ना उनकी मुश्किल को आसान में बदल दें। और इसी के दौरान स्पंदन का निर्माण हुआ। आराधना दीदी और बाकी भी मेंबर्स से मिलके हम लोगों ने एक स्पंदन एनजीओ का निर्माण किया है, जो आज अवेयरनेस प्रोग्राम से लेके किसी की भी हेल्प करना सारे काम करते हैं।
कैंसर से जुड़ी हुई अवेयरनेस को बिलासपुर और आसपास के लोगों तक पहुंचाना इस स्पंदन ग्रुप का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ कर रहा है स्पंदन। क्या क्या कर रहा है जानते हैं प्रियंका जी से।
स्पंदन कोई हमको जो पता चला कि कैंसर हुआ, तो कैंसर के बारे में तो हम जानते नहीं थे, बस हमको यही पता था कैंसर मतलब मृत्यु, तो हमको बस यही लगा कि बस हम मृत्यु के करीब खड़े हैं और अब बस हमारी बारी आ गई है। पहले से हमको पता चल चुका कि अब हमको जाना ही है। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जब गई थी और रो रही थी, तो सर ने कहा कि तुमको मिलाता हूँ मैं, और मुझे 2-3 सर्वाइवर्स से भी मिलाए थे सर, और मेरा रोना देखकर बोले कि आराधना त्रिपाठी कहाँ है, इसको उनसे मिलाओ। तो आराधना त्रिपाठी नहीं है, ये हमारी संजीवनी बूटी है। तो इनसे मिलने के बाद, दीदी से मिलने के बाद, दीदी का हौसला देखकर जो उन्होंने हमारे अंदर एनर्जी का स्रोत उत्पन्न किया, वो आज तक जारी है। देखिए, कैंसर आज भी जहाँ भी कोई भी नाम सुनता है तो रूह कांप जाती है, वास्तव में कांपने वाली बीमारी ही है ये। स्पंदन से जुड़कर हम लोग बस यही कर रहे हैं कि हमारी आवाज जहाँ तक जाए, जितने लोगों तक पहुंचे, वो सब हमारी आवाज सुनकर जागरूक हो जाएं। कैंसर कोई भी बीमारी शरीर में जब आता है तो पहले आने के पहले इंडिकेट करता है कि मैं आपके शरीर में आ रहा हूँ, बताता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बीमारी क्या है, जितनी जल्दी पकड़ में आएगी उतनी जल्दी ही हम ठीक भी हो सकते हैं, चांसेस पूरे पूरे रहते हैं जितने जल्दी ठीक होने के लिए। तो हम स्पंदन के माध्यम से हर एक एक लोगों तक अपनी यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप कोई भी चीज को तरह स्वीकार करिए, कुछ भी हो रहा है आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं, बताएं और जल्दी ठीक हो।
आराधना दीदी जो है वो संजीवनी बूटी है, ऐसा कहा प्रियंका ने। हम आपको बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आराधना जी अपने कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद इतने लोगों को संजीवनी बूटी देती रही हैं, और वो सारे लोग भी जुड़ रहे हैं, और सिर्फ बिलासपुर नहीं, दूर दूर से भी उनको और उनके इस स्पंदन ग्रुप को कैंसर अवेयरनेस के लिए लगातार बुलाया जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में उनको काउंसलर नियुक्त किया गया है, और वो इस तरह से बहुत सारे कैंसर रोगियों को हिम्मत देने का काम करती हैं। प्रियंका ने एक बात कही, कैंसर शब्द सुनकर रूह कांप जाती है, और कैंसर का मतलब एक आम इंसान के मन में होता है मौत आना, मौत को सामने से देखा है इन लोगों ने। लेकिन तकनीक इतना विस्तार हो चुका है कि अब लाइलाज नहीं है कैंसर जैसा कि पहले माना जाता था। लाइलाज तब नहीं होगा जब इंसान जागरूक होगा, जब वो खुद विल पावर रखेगा, अपनी ऊर्जा लगाएगा कि मुझे ठीक होना है, तभी वो कैंसर जैसे रोग पर विजय पा सकता है। संजीवनी बूटी देने वाली आराधना जी की शुरू से सहयोगी रही हैं श्वेता शुक्ला, उनसे हम जानते हैं कैसे शुरुआत हुई और अब क्या स्थिति है। इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, इतने सारे निगेटिव थिंकिंग वाले लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं।
सभी को मेरा नमस्कार, और जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जिसकी कभी ना कमर पिराई वो का जाने पीर पर आई, तो मैं तो कैंसर सर्वाइवर नहीं हूँ, लेकिन जो पीर है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। एक तो आराधना ही थी, आपको मैं आज बताऊंगी, मुझे हंसी आती है कि जब आराधना को कैंसर डिक्लेयर हुआ था तो मैं और मेरी सासू माँ डर के मारे इससे मिलने भी नहीं आए थे। जब पता चला कि आराधना आ गई है हॉस्पिटल से घर और ठीक है, तब फिर हम गए इसे देखने, इतना डरते थे। लेकिन उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ को हुआ, फिर मैं हॉस्पिटल जाती थी उनके संग और आराधना भी रहती थी, तो मैंने वहाँ पर फिर बहुत करीब से देखा। वैसे तो आज से 36 ईयर पहले मेरे फादर को ब्लड कैंसर था, और तब तो इतना एडवांस मेडिकल भी नहीं था, सीधे आप जाइए टाटा मेमोरियल और जो उन्होंने कहा सो कहा, और वो खुद डॉक्टर थे तो वो जान गए थे। तो मतलब कैंसर मतलब मृत्यु का दूसरा नाम था। आज ऐसा नहीं है, आज तो बस अरे फलाने को कैंसर, हमारे नियर डियर में कितने को हुआ, क्या है, तो नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी उसका कीमो हुआ है, डॉक्टर ने कहा कि इस कीमो के बाद वो बिल्कुल एकदम बढ़िया स्वस्थ हो जाएगा। और ये बात साबित भी हो रही है, जब मैं इन लोगों से जुड़ी, आराधना है और बिन्नी है, प्रियंका है, और इनके संग हम एक किटी भी शुरू किए हैं, और उसमें हम देखते हैं कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ इन लोगों के संग बैठ के। इनका जो मैं एक एनर्जी देखती हूँ, शायद इन्होंने जीवन को पाया है या समझा है जीवन को कि इसका क्या महत्व है, इसलिए शायद ये इतनी ज़्यादा एक्टिव हैं और एनर्जेटिक हैं कि ऐसा लगता है कि मैं रोगी हूँ और ये निरोगी है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं भी इनकी कैंसर किटी से जुड़ी, एक भी चूक जाती है तो मुझे अखरता है, और सारे पेशेंट मेरे से जुड़े हैं और बहुत अच्छे से। कैंसर मतलब ये नहीं है कि मृत्यु, देखिए मृत्यु तो अटल सत्य है, आप सड़क में जा रहे हैं, एक्सीडेंट होगा, आपकी स्पॉट डेथ भी हो सकती, तब तो आप जीवन की योजना भी नहीं बना सकते क्योंकि तुरंत ही आपको मृत्यु ने गले लगा ली। लेकिन ये रोग है या कोई भी रोग है, कम से कम आपको आपकी जीवन की योजना बनाने का, भविष्य बनाने का एक समय तो देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कभी ऐसा, भगवान न करे, लेकिन कोई आप में से किसी को ये ऐसा डिक्लेयर होता है या संभावना होती है इस रोग की, तो घबराएं बिल्कुल नहीं, उसको समझे और समझने का प्रयास करें, उन लोगों से मिले जो इस चीज़ को, इस जीवन को जी चुके हैं, उनसे आप मिलकर आप अपनी जो मतलब तकलीफें हैं, जो डर है, उसको दूर कर सकते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि मैं स्पंदन से जुड़ी हूँ और स्पंदन का उद्देश्य है कि कैंसर सर्वाइवर्स को मिलना जुलना। एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते रहते हैं, जगह जगह जाकर लोगों को चेताते हैं कि आपको कैंसर ना हो, आपको यदि कुछ ऐसा लगता है, कोई चीज़ आपके शरीर में लंबे समय तक है, तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराइए। और इस तरह का कुछ भी आपको थोड़ा भी लगता है या डर आता है तो आप स्पंदन से संपर्क कर सकते हैं। जैसे मेरा नंबर है, मैं श्वेता शुक्ला, 9993403869। एक बार और मैं दोहराऊंगी अपना नंबर, 9993403869।
तो श्रोता साथियों, ये नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको कभी भी इस नंबर की ज़रूरत हो, आपके आसपास या किसी को भी ऐसा लगता है कि उसको कैंसर के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, या किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ है उसको हिम्मत की ज़रूरत है, तो आप स्पंदन से संपर्क कर सकते हैं, और या फिर आप अर्पा रेडियो से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9179132444। श्वेता जी, आपने एक बात कही कि मैं इन लोगों के बीच में रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी कम है और इन लोगों की एनर्जी जो है मुझसे ज्यादा है, शायद इन लोगों ने दूसरी जिंदगी पाई है इसलिए ये जिंदगी का अर्थ समझते हैं। तो आराधना जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने दूसरी जिंदगी पाई है, या आपने मौत को इतने करीब से देखा है, उसके बाद जो ये जिंदगी जी रही है इसमें मैं कुछ ऐसा करूं कि बाकी सबका कुछ हित हो, ये सोचकर आप आगे बढ़ी हैं, या आपके दिमाग में क्या आता है, क्या अनुभूति होती है?
श्वेतमादी से सच में हम लोग भी सहमत हैं कि ये तो लगा वाकई जो दूसरा जीवन मिला है, क्योंकि एक इतने प्यारे प्यारे हम लोग को कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं। तो जैसे एक उदाहरण बता रही हूँ, अपोलो से हम निकल रहे थे, कोई कार्यक्रम ही था अवेयरनेस का, बहुत लेट हो गया था, कोशिश कर रहे थे सब वापस हों वहां से, तो स्टाफ भी निकल रहा था, 6:30 बजे का समय था, तो कुछ लोग हम लोग को जानते, मतलब हम उनको नहीं जानते हैं, वो हमसे जानते, क्योंकि कार्यक्रम में वो भी थे नर्सिंग स्टाफ ऐसा हॉस्टल वाले, उन लोग निकल रहे थे, वो हम लोग के पास आए, बोले आप लोग का कार्यक्रम बहुत अच्छा था मैम। और एक चीज बोलूं, हम लोग जितने लोग वहां पे बैठे थे ना, सबसे ज्यादा चेहरा आप ही लोग का ग्लो कर रहा था तो कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड इनिंग वाली बात है कि हम आज को जीते हैं, ये बात तो सच है। अरे एक एक कॉम्प्लीमेंट और याद आ रहा है कि उनका कहना था कि क्या आपके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कैंसर होना जरूरी है मतलब ये कुछ चीजें ऐसी है जो छू जाती है।
सही बात।
और सच में हम मतलब तरसते हैं मिलने के लिए, हम लोग कुछ कुछ दिन होता है तो उसके बाद अब बेचैनी सी होने लगती है कि अब कुछ करो भाई, मिलना है, बहुत दिन से मिले नहीं है।
नहीं, और इन लोगों के बीच में रह के मैं तो अपना नाम निर्भया भी दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ना करे, लेकिन ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है आराधना तो है, कुछ नहीं होगा मुझे।
सच में ये सबके साथ है, मतलब अभी बहुत लोग नहीं है हमारे ग्रुप से। मैं किसी एक व्यक्ति का भी नाम लूंगी जो कि आप आराम से उनसे मिलिए और बात कीजिए, और इतने पॉजिटिव हैं वो, खुद की तकलीफों के साथ पॉजिटिव हैं।
आपने कहा अभी यहाँ नहीं है और सब लोग इतने पॉजिटिव हैं, हम चाहेंगे आराधना जी कि हम सबसे अलग अलग मिलें और सबसे अलग अलग बातचीत करें अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से।
मैं वही चाह रही हूँ कि आपको उत्सुकता बनी रहे, क्योंकि प्रश्न हमेशा रहते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे पता चला, फिर आपने क्या किया, कहाँ किया और वही क्यों किया। बहुत सारे सवाल हैं।
आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी, मैं बताना चाहूंगी कि आराधना दीदी जो है हमारी संजीवनी बूटी के साथ साथ और भी बहुत काम कर रही है। वो भले हम स्पंदन के साथ सभी का सहयोग रहता है, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की है जो ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट हैं उनके लिए जो ब्रा बनती है वो भी।
हाँ, मैं वही बताना चाहूंगी बिनी जी कि सच में जब मेरे को प्रॉब्लम हुई तो वो लेने के लिए मुझे 3,000 रुपए लगे थे। तो एकदम ठगा सा महसूस हुआ था कि अरे इतनी बड़ी बीमारी के बाद जो चीज हम 200-300 में ले रहे हैं वो 3,000 में मिल रही है। तो मतलब ऐसा लगता था कि इस बीमारी के बाद तो कंपनी वालों को ऑनर में हम लोगों को फ्री देना चाहिए। इतने लोग खरीद रहे हैं, कॉमन लेडीज, जो बच्चे से लेके जो 15-16 साल की लड़कियों से लेके बूढ़े होते तक हम इस चीज को खरीद रहे हैं। लेकिन यदि अकस्मात है ना, दुर्भाग्य से अगर ये बीमारी हो जाए तो क्या हम 10 गुना कीमत के साथ इसको खरीदेंगे? तो उस समय एक तो आहत मन रहता है हर तरफ से, फाइनेंस और बहुत चीजों, मतलब जो मौत के
भी नहीं
नहीं रहती है, तो ऐसा लगा कि ये फ्री में मिलनी चाहिए। इलाज तो आदमी फ्री में नहीं करा सकता, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी स्पंदन। तो हम ये बोलना जरूर चाहेंगे, हमारी पूरी टीम इस बात के लिए सहमत है कि पैसा जान से बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए आयुष्मान से इलाज कराना हो, उनको रास्ता बताना, बिना पैसे के भी आप कैंसर से जीत सकते हैं।
और आपने जो ये अंडरगार्मेंट्स की बात की, जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाएं होती हैं, उनको ये कैसे मिल सकती है, शहर के बाहर कैसे जा सकती है, लोग आपके साथ संपर्क करें, तो ये आप निःशुल्क प्रदान करती हैं या शहर में घर पहुंच सेवा होती है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे।
देखिए, जो हम ब्रा देते हैं कैंसर सर्वाइवर्स को, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को, वो निशुल्क उनको दिया जाता है जो वाकई देने लायक नहीं है, जिनका आयुष्मान से इलाज चल रहा है, वो अपना यदि हमें डिटेल भेजते हैं तो हम उनको निशुल्क देते हैं। और आप भारत में कहीं पर भी हैं, हम वहां पर उनको कुरियर के द्वारा भेजते हैं और जो दे सकते हैं उनसे हम सिर्फ लागत लेते हैं।
बहुत नॉमिनल रहते हैं इसके प्राइजेस जो दीदी ने रखे हैं, वो बहुत ही नॉमिनल है, आप आराम से पे कर सकते हैं।
और जगह पे है
ये छत्तीसगढ़ में तो हम लोग ही कर रहे हैं ये काम को, ये और कहीं पे भी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि कीमत पे आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी प्रॉफिट नहीं है।
अच्छा,
हम लॉस में भी नहीं है, हम वही लागत ले रहे हैं जो हमारा खर्च होता है। इवन हम कुरियर भी अगर करते हैं तो उसका भी चार्ज लेते हैं, क्योंकि हम इसमें सेवा ही है, मेन भाव इसमें सेवा है और सबको मिले
जी।
तो जिसको चाहिए, जहां से चाहिए, हम अपने नंबर शेयर कर देते हैं और वो कॉल करेंगे। पहली बार मैं चाहती हूँ कि वो पहन के एक बार ट्राई करें, क्योंकि कुछ दिक्कतें होती हैं अगर ब्रेस्ट रिमूव है उसके बाद पहनने में कुछ दिक्कत होती, तो जो आप पहले नॉर्मल पहनते थे उससे साइज में फर्क आता है। इसलिए चाहते हैं कि पहली मीटिंग वो अपनी आके करें, और यदि नहीं है तो भी हम फिर कुरियर करते हैं, क्योंकि जो बाहर है, दिल्ली के हैं, बॉम्बे के हैं, समस्तीपुर है, झारखंड, ये तो नहीं आ सकते हैं।
तो आपके प्रोडक्ट्स इन सब जगहों पे जाते हैं?
सब जगह पे जाते हैं।
अच्छा,
हाँ, क्योंकि वहां पे और महंगे हैं। तो मैं अपना नंबर देती हूँ, मैं आराधना त्रिपाठी, 9981051880। एक बार फिर से बोल रही हूँ, 9981051880। आप इस नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं।
एक बात और बोलना चाहूंगी संज्ञा जी कि कोई पेशेंट है जो हमारा ये कार्यक्रम सुन रहा है, यदि उसे या उसके आसपास कोई ऐसा लगता है कि जिसको कैंसर है या हो बोला गया है, वो भी नंबर तो हमने दे ही दिया है, तो वो संपर्क खुल के कर सकता है। कई बार संकोच करते हैं कि कैसे करें उस बीमारी के बारे में बात, उनको कहीं ऐसा बुरा ना लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग बहुत अच्छे से, एक जैसे सेलिब्रिटी का आप इंटरव्यू लेते हैं, वैसे इन हमारी हिम्मत वालियों का आप लोग ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ये खुल के अपनी बीमारी के बारे में आपको बताएंगी, आपको सावधान करेंगी।
बहुत सही कहा श्वेता जी ने। और प्रियंका जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि स्पंदन से जुड़ने के बाद, जैसे आपसे डॉक्टर ने कहा था कि आराधना त्रिपाठी से मिलिए और उसके बाद वो मिली, उसके बाद आप स्पंदन से जुड़ी, तो उसके बाद की कुछ बातें भी तो हमारे साथ शेयर कीजिए।
सबसे ज्यादा डरपोक प्रियंका शुक्ला।
सही बात है, मैं वास्तव में बहुत डरपोक हूँ। जब मेरा डायग्नोज भी जब हुआ था, मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जब हम लोग का अपोलो में प्रोग्राम हुआ एक साल बाद, अक्टूबर 17 में हम लोग का जब प्रोग्राम हुआ, तो वहां मैं पहली बार आराधना दीदी से मिली। तो सर सबसे पहले मुझे बोले कि तुम आओ, पहले इनसे मिलो। तो जब आराधना दीदी से मैं मिली तो 2 मिनट लगा कि ये तो एकदम समान है, सर बोल रहे हैं कि इनसे मिलो, ये क्या करेंगे। तो दीदी की जो बातें थी वो, क्योंकि खुद भी वो इस चीज से उभर के बाहर आई थी।
हमारे ना मीडिया प्रभारी भी यही है ना।
अच्छा।
जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जो हमारे इंस्टा में वीडियो डालते हैं, फेसबुक जो रील बनते हैं, जो हमारे क्या कहना चाहिए, पूरा 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 हमारी मेन हीरोइन यही।
अच्छा। और सबसे डरपोक है। हाँ, तो जब दीदी से जब मैं मिली थी ना, तो दीदी जो बात की मुझसे, जैसे मेरे घर वाले भी मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिए हैं, घर वालों के कारण ही यहाँ तक मैं आई हूँ। और घर वालों के बाद जो दूसरा व्यक्ति, क्योंकि जब कैंसर आपको हुआ ना, तो सिर्फ लोग बोलते हैं आप सुनते हो, तो जो जो पेशेंट रहते हैं ना उसको कोई सुनने वाला चाहिए। तो दीदी बहुत इत्मीनान से मुझे सुनी कि आपकी लड़की क्या बोल रही है, क्या चाहती है। तो जो पहला दीदी के साथ मीटिंग थी ना, वो इतनी अच्छी थी, इतनी पॉजिटिव था उसमें, कि मैं तुरंत बोली दीदी अपन एक ग्रुप बनाए क्या, कि अब आपस में मिलते, कोई भी समस्या तो शेयर करते। दीदी बोली हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करते। तो पहला जो ग्रुप हमारा हम जिंदा दिल का, हम लोगों ने सर्वाइवर्स का बनाया था, तो पहला मैं और दूसरा शायद दीदी ही थी।
अच्छा।
और उसके बाद हम लोग का वो ग्रुप जो बनता गया सर्वाइवर्स का,
70 लोग।
हाँ 70 लोग हैं,
70 लोग ग्रुप में हैं, एनजीओ में 17 हैं, और लगभग काउंसिल मेरी हो चुकी है 600 से।
ओहो। हम जिंदा दिल, बहुत अच्छा नाम सुन करके हम लगा कि वाकई में आप लोगों से मिलके भी ऐसा लग रहा है कि आप जिंदा दिल। तो यूं ही आप लोग जिंदा दिल बने रहे, लोगों को रास्ते दिखाते रहे, लोगों को कैंसर के प्रति अवेयर करते रहे। हमारी आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
टॉक शो विद अर्पा रेडियो।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।